ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है भारत और ब्रुनेई के बीच साझेदारी के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं विभूति मिश्रा।
श्रोताओं नमस्कार, सुर्खियों में आपका स्वागत है। आज हम ब्रुनेई और भारत के द्विपक्षीय जो संबंध हैं उस पे हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ विशेष मेहमान हैं अशोक सज्जनहार जो कि पूर्व राजदूत हैं। अशोक जी आपका बहुत स्वागत है।
जी धन्यवाद।
ब्रुनेई की आजादी की 40वीं वर्षगांठ है और भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा है। इस यात्रा को आप किस रूप में देखते हैं अगर हम समग्रता की बात करें तो?
जी बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है मेरे विचार से। जैसे आपने कहा जो 40 साल हो गए हैं ब्रुनेई को अपनी आजादी मिले हुए। पहले वो एक ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था। 1 जनवरी 1984 में उसने आजादी ग्रहण की और भारत के साथ भी उसी साल मई के महीने में भारत के साथ उसने अपने राजनीतिक संबंधों को स्थापित किया। तो 40 साल ब्रुनेई की आजादी के हुए हैं, 40 साल हमारे दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों का हुआ है, परंतु हमने 40 साल में एक भी भारतीय प्रधानमंत्री को वहां पर द्विपक्षीय यात्रा करते हुए हमने नहीं देखा है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है जो प्रधानमंत्री मोदी ने ये 40 साल इसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी रिलेशंस को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और वहां पर जाकर अपने द्विपक्षीय संबंधों को और हम आगे कैसे ले जा सकते हैं उसके बारे में बातचीत हुई है। उसके बारे में ज्वाइंट स्टेटमेंट हुआ है जो हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशंस है और पार्टनरशिप है जो इतने सालों से चल रहा है उसको हमने और आगे बढ़ाया है, इसको एनहांस्ड पार्टनरशिप का हमने दर्जा दिया है और बहुत ऐसे मुद्दों पर बातचीत हुई है जो द्विपक्षीय सहयोग को आगे ले जाएंगे और वहां पर जो स्थानीय जो रीजनल इश्यूज हैं उसके ऊपर भी जो कैसे वहां पर स्थिरता लाई जाए, कैसे वहां पर शांति लाई जाए, शांति को मुहाल किया जाए और वहां पर और समृद्धि लाई जाए, इन सब के बारे में बातचीत हुई और इसको आगे ले जाने के तरीके निकाले गए हैं।
हमारे श्रोताओं को ये समझाइए आप कि दक्षिण चीन सागर की सीमा पर बसा यह देश हमारे लिए खास क्यों है और कितना है?
दक्षिण चीन महासागर जो है साउथ चाइना सी जिसे बोला जाता है, वहां से अगर भारत का आयात निर्यात में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और न केवल भारत के आयात निर्यात में परंतु पूरी दुनिया का अगर हम देखें आयात निर्यात तो वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण उसका योगदान है। हमारे करीब 40-50% हमारा जो व्यापार है वो वहां से साउथ चाइना सी से होकर जाता है। वहां पर हमारे बहुत ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध है, वियतनाम है, फिलीपींस है, मलेशिया है, ब्रुनेई है और जो पूरे आसियान के हैं 10 देश उनके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। अब कुछ सालों से चीन ने वहां पर एक जिसे कहा जाए 9 डैश लाइन ड्रॉ की है। वो साउथ चाइना सी करीब 4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का उसका क्षेत्रफल है और चीन कहता है जो हमारे मछुआरे वहां पर हमारे तट से 2000 किलोमीटर दूर तक जाते थे फिशिंग करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, तो ये सारा जो साउथ चाइना सी है ये हमारे क्षेत्र में आता है। तो इसमें अगर कोई किश्ती आती है, कुछ और आते हैं तो उनको हमसे अनुमति लेनी चाहिए। यहाँ से कोई ओवरफ्लाइट होती है तो हमसे अनुमति लेनी चाहिए क्योंकि ये हमारा एरिया है। परंतु भारत और बहुत सारे और देश हैं जो ये मानते हैं जो वहां पर फ्री ओपन इंडो पैसिफिक होना चाहिए। ये जो क्षेत्र है ये ग्लोबल कॉमन्स में आता है और ये फ्री ओपन और इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक के बारे में हम बात करते हैं और इसी में ब्रुनेई भी हमारे साथ मिला है क्योंकि ब्रुनेई भी एक छोटा देश है परंतु उसके पास बहुत मात्रा में फॉसिल फ्यूल्स हैं, ऑयल है, गैस है जो वो निर्यात करना चाहता है। तो उसके लिए भी फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक का बहुत महत्व है। तो इसीलिए अगर हम क्षेत्रीय नजर से देखें तो वहां की शांति ब्रुनेई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट जो जारी किया है उसमें इसके बारे में पूरी तरीके से खुलासा भी किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के शुरू में ही वो ब्रुनेई चले गए, लेकिन इससे पहले देखिए 40 साल हो गया और आप इसको क्या कारण समझते हैं कि आखिर इतना महत्वपूर्ण ये देश है हमारे लिए कई कारणों से, तो इसके पीछे जो नहीं जा पाए जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं, चूक हुई तो कहां से हुई?
देखिए मैं तो ये समझता हूं जो पहले जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं तब से तो उन्होंने चाहे छोटे देश हैं बड़े देश हैं, सब हाँ। देशों को बहुत महत्व दिया है और सब देशों में गए हैं। अगर मैं आपको कुछ मिसाल दूं, जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में जिस साल में वो चुनकर पहली मर्तबा आए थे और वो ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो उन्होंने कहा था जो ये भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया में यात्रा 28 साल बाद हो रही है। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए थे। उसके बाद वहां नवंबर 2014 में वो फिजी में भी गए थे, फिजी में भी 33 साल बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री वहां पर आया है। तो ये समझता हूं जो दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं, हमारे पड़ोस में भी देख लीजिएगा, अगर वो गए अगस्त 2014 में नेपाल में गए, तो ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 17 साल बाद वहां पर यात्रा थी। और जब वो गए वहां पर श्रीलंका में मार्च 2015 में, तो तब भारतीय प्रधानमंत्री की 32 साल बाद वहां पर यात्रा थी। और आपको पता है जो हमारे पड़ोसी देश है उनका क्या महत्व होता है हमारी द्विपक्षीय सहयोग में, संबंधों में और अपने क्षेत्रीय शांति के लिए। तो इसीलिए मैं समझता हूं प्रधानमंत्री मोदी ने हर देश को बहुत ध्यान दिया है, परंतु उससे पहले जो सरकारें आई हैं वो ज्यादातर जो बड़े देश हैं, चाहे रूस है, चीन, अमेरिका है, यूरोप है, उनके ऊपर ही ज्यादा उन्होंने ध्यान दिया है। परंतु प्रधानमंत्री मोदी ने चाहे अफ्रीका में हो, अफ्रीका में आपको मालूम है करीब 18 हमने नई वहां पर एम्बेसी खोली है, तो हर छोटे बड़े देश को उन्होंने ध्यान दिया है। ऐसा नहीं है जो अगर छोटे देश में जाते हैं तो बड़े देशों को ध्यान देना कम कर दें, परंतु उन्होंने सभी छोटे देशों के साथ भी अपने संबंधों को मिलाकर सहयोग को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया है।
और इसीलिए जो छोटे देश हैं, जो कम विकसित देश हैं, उसके लिए भारत जो है वो ग्लोबल आवाज भी बन रहा है।
हालांकि मैं ब्रुनेई के बारे में ये नहीं कहूंगा जो वो कम विकसित देश है, क्योंकि अगर उसका पर कैपिटा इनकम हम देखें तो करीब $90,000 है, उसकी आबादी बहुत कम है, परंतु उसका जो पर कैपिटा इनकम है $90,000 है, मतलब कि सिंगापुर की जिसकी पर कैपिटा इनकम करीब $70,000 है, उससे भी ज्यादा ब्रुनेई के वहां पर कैपिटा इनकम है। तो वो बहुत ही एक प्रॉस्परस देश है, परंतु छोटा देश है। तो इसीलिए कभी लोग कहते हैं जो उनका महत्व नहीं है, परंतु वो आसियान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और हमारे लिए अगर हम कहें तो हमारे लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी में और हमारी जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है जिसका मैंने थोड़ा जिक्र किया, जो हमें फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक चाहिए, वहां पर पीस ट्रैंक्विलिटी चाहिए। हम समझते हैं जो ये वाले जो साउथ चाइना सी है, ये क्षेत्र है जो कि सभी देशों के जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, वेसल्स हैं, वो वहां पर आ जा सकने को उनको पूरी आजादी होनी चाहिए। तो वो महत्वपूर्ण है और उसमें ब्रुनेई भी हमारा साथ दे रहा है और भारत भी उसके साथ अच्छा सहयोग कर रहा है।
जैसा कि अभी आपने कहा कि भारत ब्रुनेई के साथ अपने संबंधों को इनहेंस्ड पार्टनरशिप का दर्जा दे रहा है, इसी में हम अगर आर्थिक, वैज्ञानिक और रणनीतिक क्षेत्रों के पहलू को समझे, इसमें सहयोग करने की बात को समझे, तो इसमें कितनी मजबूती आपको दिख रही है?
मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने पहले कहा जो वहाँ पर तेल और गैस बहुत मात्रा में मिलते हैं, पिछले हमारी पहली जो बायलैटरल ट्रेड था, द्विपक्षीय हमारा व्यापार था, वो करीब $500 मिलियन का हुआ करता था। वो अभी थोड़ा कम हो गया है क्योंकि हमारा इम्पोर्ट वहाँ से ऑयल गैस का थोड़ा कम हुआ है पिछले 2-3 साल में। परंतु अभी जब प्रधानमंत्री मोदी गए हैं तो हमने एक लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट वहां से एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस को वहां से इम्पोर्ट करने के लिए वहां पर ये हमने एक अग्रीमेंट हुई है, जिससे कि मैं समझता हूं जो अपने व्यापार और निवेश को बहुत ही बड़ा एक पुश मिलेगा, एक इम्पेटस मिलेगा, एक आगे जाने पर में प्रगति होगी उसमें। दूसरा, हमने वहां पर स्पेस कोऑपरेशन हमारा पहले से चल रहा है, वहां पर हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का 2000 से हमारा वहां पर एक ऑफिस है जिसमें हम टेलीमेट्री रिकॉर्डिंग्स वगैरह करते हैं, और उसको और आगे ले जाने के लिए इसमें भी सहमति हुई है दोनों देशों के बीच में। वहां पर रक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में वो भी बातचीत हुई है जो कैसे हम दोनों देश वहां पर इसके ऊपर अपना सहयोग स्थापित कर सकते हैं। अभी तक हमारी वहां के जो सैनिक हैं भारत में आते हैं उनको ट्रेनिंग मिलती है। इकोनॉमिक एरियाज में भी, आर्थिक क्षेत्रों में भी, स्किल डेवलपमेंट में हम वहां पर ट्रेनिंग देते हैं। एक हमारा प्रोग्राम है जिसे कहा जाता है आईटेक इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम, उसमें हर साल हम 2 ब्रुनेई से उनके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बुलाते हैं, उनको निमंत्रित करते हैं, न्योता देते हैं और यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारे सबसे बड़े ऊंचे और अच्छे संस्थानों में उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ऐसे इन सब क्षेत्र में और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट में, क्योंकि हमारे वहां पर करीब 15,000 भारतीय नागरिक वहां पर हैं जो कि काम करते हैं, तो इन सब क्षेत्रों में भी बातचीत हुई और इस सहयोग को कैसे आगे ले जाया जाए ये भी किया गया। और आपने कहा रणनीतिक क्षेत्र में, तो वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जब उनके लिए भोज का प्रबंध किया गया वहां पर उन्होंने अपने भाषण में इसके बारे में कहा, जो भारत ब्रुनाई के साथ ऐसा सहयोग करना चाहता है जो उसके फायदे का हो, और हम विस्तारवाद की नीति हम नहीं अपनाते हैं, और उनका बिल्कुल इशारा चीन की तरफ था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल ठीक इसमें कहा, जो हम आपके हित का आपके फायदे का जो सहयोग होगा वो हम डेवलप करेंगे, उसको आगे लेकर जाएंगे, और विस्तारवाद की नीति को हम नहीं मानते हैं।
अभी आपने कुछ देर पहले ऊर्जा क्षेत्र की बात की, स्पेस की बात की, रक्षा उद्योग की बात की, ट्रेनिंग और क्षमता निर्माण की बात की, और ये भी कहा कि जो पीएम किस तरह जो है वो विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद पे वो ध्यान देते हैं। इसके अलावा कृषि उद्योग, फार्मा, स्वास्थ्य, फिनटेक और साइबर सिक्योरिटी पे भी बातचीत हुई है। इस पे जो आपसी सहयोग है दोनों देश का, इस पर आप क्या भविष्य देख रहे हैं?
मैं बहुत अच्छा भविष्य देखता हूँ, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। अब देखिए 10 साल पहले हमारी स्थिति थी जो हम पूरे विश्व में करीब 10वें या 11वें नंबर पर थे, जो हमारी आर्थिक व्यवस्था की स्थिति थी, दशा थी, और पिछले 10 साल में हमने करीब 5वें स्थान पर आ गए हैं, और अब एक दो साल में पूरे विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। अब पूरी दुनिया देख रही है भारत की इस प्रगति को, उसने ये देखा है जो पूरी दुनिया में जो आपदाएं आई हैं, जो मुश्किलें आई हैं, जो मुसीबतें आई हैं, जैसे कोविड-19 पेंडेमिक जो 2020 के शुरुआत में उसका प्रारंभ हुआ, उसने पूरी दुनिया के सभी देशों की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ कर रख दिया। वहां पर उनकी जो हेल्थ इश्यूज हैं इतने ज्यादा वो लेकर प्रॉब्लम्स आए, जो सोशल इश्यूज हैं इतने बढ़ चढ़ कर सब देशों के सामने आए, परंतु इन सब के होते हुए भारत अपने प्रगति के रास्ते पर चलता रहा। उसके बाद हमने देखा है रूस यूक्रेन का युद्ध आया है, जिससे कि पूरी दुनिया में चाहे फूड हो, एनर्जी हो, फॉसिल फ्यूल हो, फर्टिलाइजर हो, इन सब की कमी हुई है, परंतु भारत अपने प्रगति के मार्ग पर चलता रहा है। और उसके बाद हमने ये हमास और इसराइल का भी युद्ध देखा, जो पिछले 10 महीने से ज्यादा हो गए जो चल रहा है, परंतु भारत अपने प्रगति पर चल रहा है। तो इसीलिए पूरी दुनिया ये देखती है जो भारत क्या अचीव कर पाया है, जैसे हमारा डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये पूरी दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण बनकर उभरा है, क्योंकि इससे एक तो स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस, जो भी आपका व्यापार है उसको करने में बहुत तेजी आती है, दूसरा करप्शन एकदम खत्म होता है। तो जो सभी देश हैं दुनिया के, वो चाहते हैं जो भारत ने जो तरक्की की है उसके साथ हम मिलें, और भारत जिसे कहा जाए पार्टनर ऑफ चॉइस बनकर उभरा है। आपको मालूम है जब भारत पिछले साल G20 के शिखर सम्मेलन का हम अधिपत्य कर रहे थे, तो तब हमने दो जो कहा जाता है वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट वो किए थे, जो मतलब ग्लोबल साउथ है उसकी कैसे भारत आवाज बनकर उभरा, जो उनके मुद्दे हैं, जो उनके मसले हैं, जो उनकी कंसर्न्स हैं, इंटरेस्ट हैं, हित हैं, उनको देखा जाए, उनको समझा जाए, और उनको जो भी बातचीत हो रही है उसको हम कैसे जो G20 का जो फाइनल डिक्लेरेशन था, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, उसमें उनको कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए। और अभी उसी क्रम को आगे ले जाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट आयोजित किया, जिसमें ब्रुनेई के जो सुल्तान हैं उन्होंने भी उसमें शिरकत की, उन्होंने भी उसमें भाग लिया, और ये भी दोनों देशों के संबंधों को आगे ले जाने में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।
अभी आपने जो भारतीय समुदाय की बात की थी, तो अच्छी खबर यह है कि दोनों देशों के बीच जल्द ही डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने वाले हैं, और कल वहां दूतावास का भी लोकार्पण हुआ है। अशोक जी, आप सुर्खियों में आए और हमारे श्रोताओं को आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।
बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे भारत और ब्रुनेई के बीच साझेदारी के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे विभूति मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।